ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مشرقی یورپ میں امریکی میزائل شیلڈ کی تعیناتی کا منصوبہ اور روس کا شدید رد عمل۔ اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین 2010 میں لسبن اجلاس میں امریکہ اور نیٹو نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ مشرقی یورپ کے بعض ملکوں میں جن میں پولینڈ اور چیک جمہوریہ جیسے ممالک شامل ہیں، اینٹی میزائل سسٹم نصب کیا جائے گا۔ یہ وہ منصوبہ اور یہ وہ تجویز تھی کہ جس پر اسی وقت اور فوری طور پر اس نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کہا تھا کہ اس طرح کا منصوبہ علاقے میں طاقت کے توازن کو درہم برہم کر کے رکھ دے گا اور روس اس طرح کے منصوبے کو ہرگز قبول نہیں کرے گا اور اسے اپنی سالمیت کی خلاف ورزی اور اس کے منافی سمجھتا ہے۔ لیکن امریکہ اور نیٹو نے روس کے ان انتباہات اور رد عمل کو ایک ذرہ برابر بھی اہمیت نہ دی اور اپنے اس منصوبے پر کام کرتے رہے، اور اب تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ نہ صرف جمہوریہ چیک اور پولینڈ وغیرہ میں بلکہ ترکی میں بھی اسی طرح کا اینٹی میزائل سسٹم نصب کیے جانے کا منصوبہ امریکہ تیار کر رہا ہے۔ چنانچہ ابھی پچھلے ہی دنوں روسی صدر میدویدیف نے مسلح افواج کے کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ مشرقی یورپ میں امریکہ اور نیٹو کے ذریعے نصب کیے جانے والے اس طرح کے اینٹی میزائل سسٹم کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار رہیں۔ اس طرح کا بیان اور اس طرح کا دھمکی آمیز رد عمل جو روس کی طرف سے آیا ہے، تو اس کے پیش نظر مستقبل میں امریکہ اور روس یا اسی طرح روس اور نیٹو کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی اور یہ سلسلہ کس حد تک پیچیدہ ہو سکتا ہے اور کس حد تک بحرانی شکل اختیار کر سکتا ہے، یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار جناب جان دیال صاحب۔ جان دیال صاحب آداب ہے۔
آداب
جی جان دیال صاحب، جب سے اس منصوبے کو منظور کیا گیا ہے 2010 میں لسبن اجلاس میں، اس وقت سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ روس وقتاً فوقتاً اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ اور نیٹو کے ممالک نے روس کی تشویش کو، روس کی پریشانیوں کو ذرا برابر بھی اہمیت نہ دی۔ تو کیا روس کی اس تشویش کو بجا سمجھا جائے اور صحیح سمجھا جائے کہ یہ سارا جو منصوبہ ہے، پلان ہے، جو سسٹم ہے اینٹی میزائل سسٹم، یہ روس کے ہی خلاف ہے؟
روس کا غصہ واجب ہے۔ روس کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ کتنا بھی کہے کہ وہ ایران کے کوئی میزائل، ایران کی طرف سے کوئی خطرے کے لیے تیاری کر رہا ہے، مگر روس یہ سوچتا ہے کہ اصل میں اس کے اندر جو میزائل ہیں، اس کے جو میزائل پروگرام ہے، اس کا جو ڈیفنس پروگرام ہے، اس پہ نگرانی رکھی جا رہی ہے۔ یہ روس کا ماننا ہے، اور یہی کچھ حد تک ماننا پولینڈ کے لوگوں کا بھی ہے، کیونکہ یہ آپ دھیان رکھیے کہ پولینڈ میں بھی جہاں پہ میزائل جمع ہیں وہاں کے لوگوں کا بھی اس کے اوپر کافی ناراضگی ہے، اور دو یا تین طرح سے ناراضگی ہے۔ ایک تو کوئی بھی ودیش کا دیش، یورپ کا دیش نہیں چاہتا کہ اس کی زر و زمین کے اوپر اتنا اسلحہ جمع کیا جائے، کیونکہ کل کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے لوگوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ وہ یورپ میں امریکہ کے خلاف اتنی زیادہ دوستی نہیں ہے جتنا ہم لوگ مان کے چلتے ہیں۔ یورپ میں امریکہ کے خلاف تھوڑا بہت شک ہے، وہ مانتے ہیں کہ امریکہ کا جو ایجنڈا ہے اس میں یورپ کو کبھی بھی شہادت دینی پڑ سکتی ہے، کیونکہ امریکہ کے لیے سب سے پہلی جو بڑی چیز ہے وہ ہے امریکہ کا ڈیفنس سسٹم، اور اسی وجہ سے اس پورے چکر میں روس کے، پولینڈ کے، جو ایران کا جو اپنی بات ہے وہ کہیں تک डूब के मर जाती है, क्योंकि बेसिक खतरा मेरा ख्याल है जो इस जमघट से है वो जिसको हम हिंदुस्तान से वेस्ट एशिया कहते हैं, जिसको मिडल ईस्ट कहते हैं, वहाँ के ऊपर अमेरिका का जो दबाव है उसको एक तरीके से इस जमघट में देखा जा सकता है।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। लंदन चलते हैं जहाँ पर मौजूद हैं मुमताज तर्जनिगार और दानिश्वर जनाब प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
प्रोफेसर साहब, इन दिनों रूसी अहदेदारों की तरफ से, चाहे वो सदर मेदवेदोव हों, चाहे वजीर खारजा लावरोफ हों, या वजीर आजम पुतिन हों जो आइंदा अहदे सदारत की कमान संभालने वाले हैं, कुर्सी संभालने वाले हैं, देखा जा रहा है कि उनकी तरफ से अमेरिका और नेटो के ममालिक को इंतबाहात में शिद्दत आती जा रही है, और जो जमहूरी चेक पोलैंड वगैरह में एंटी मिजाइल सिस्टम नस्ब किए जाने की बात की जा रही है उस पर रूस में शदीद नाराजगी और गुस्सा पाया जा रहा है, और यहाँ तक मेदवेदोव ने कह दिया है अपने मुसल्लफा से कि वो इस तरह के मंसूबे का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। तो क्या सर्द जंग की तरफ दोबारा जाने की तैयारी हो रही है अमेरिका और रूस की तरफ से?
बहुत, आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको आप तारीख की रोशनी में देखें कि 2009 में जब वहाँ न्योकॉन्स जो थे, न्यो कंजर्वेटिव, उन्होंने कहा था कि रूस तो अब सोवियत यूनियन तो अब टूट गया है, अब कोई पावर इतनी मजबूत ना होने पाए जो कि अमेरिका को किसी तरह की थ्रेट दे सके। रूस ने उनको 70 साल तक परेशान रखा था, इसलिए ये जरूरी था कि अब अमेरिका की टोटल डोमिनेंस होना चाहिए सारी दुनिया के ऊपर मिलिट्रीली। ये उस सोच की कड़ी है, हालांकि ये बुश एडमिनिस्ट्रेशन में ये सोच थी, लेकिन ओबामा के ज़माने में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। आपने देखा कि अफगानिस्तान में या दुर्घटना बे वगैरह में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई, और ईरान के मसले पर भी कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है, और रूस के मसले पर तो बिल्कुल ही नहीं आई। अब ये जो मिसाइल डिफेंस बना रहे हैं, ये मिसाइल डिफेंस इनका इरादा है कि ये मिसाइल इंस्टॉल करेंगे पोलैंड में, स्पेन में, रोमानिया में और तुर्की में। उसका सारा पर्पस ये है, दो तीन पर्पस हैं। एक तो ये है कि जो बराबरी है रूस में और अमेरिका में मिसाइल को, उस बराबरी को तोड़ा जाए और अमेरिका को उसमें फौकियत हासिल हो। नंबर दो बात जो ये करना चाहते हैं वो ये है कि जो साल्ट स्टार ट्रीटी जो साइन की है 2011 में, उसको भी वो रद्द करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है रूस जो है वो उस ट्रीटी को फिर बर्दाश्त नहीं करेगा अगर ये उन्होंने मिसाइल कायम कर दिए। और तीसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिटरेंट है, जो रूस का के मिसाइल का डिटरेंट है कि उसके ऊपर कोई अटैक ना कर पाए, उस डिटरेंट को जो है वो कमजोर करें। जो है ये सारी इनकी पॉलिसी है कि रूस को किसी तरह कमजोर किया जाए कि वो ना यूनाइटेड नेशन में और ना इकोनॉमिकली अमेरिका के सामने खड़ा हो पाए। जहां तक रूसी लीडरशिप का ताल्लुक है, पुतिन ने भी तकरीर में कहा है कि ये जो मिसाइल डिफेंस है ये हमारी मुल्क की फौकियत और हिफाजत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और इससे जाहिर होता है कि रूस के जो लीडर हैं वो इसको बहुत अहमियत दे रहे हैं। और इस अहमियत की रोशनी में आप देखेंगे कि यह सर्द जंग जो है एक तरह से अब शुरू हो चुकी है, और रूस को भी अपने मेजर्स लेना पड़ेंगे कि अपनी हिफाजत के लिए। उन्होंने कई मेजर्स तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हैं। एक तो ये है कि क्लिनग्राड जो कि पोलैंड मशरक पोलैंड और पोलैंड और लिथुआनिया के बॉर्डर पे है, वहाँ पर वो इस्कंदर मिसाइल्स लगाएंगे। इस्कंदर मिसाइल जो है उसकी 500 किलोमीटर रेंज है और उसके कई वारहेड होते हैं उसके ऊपर। उसका पर्पज़ ये है कि ये जो इंस्टॉल करेंगे अपनी मिसाइल्स को, उसको न्यूट्रलाइज कर दे जो है। और दूसरा जो है, उन्होंने ये कहा है कि हम शिप्स के ऊपर मिसाइल करके उन मुल्कों के करीब ले जाए रखेंगे जहाँ पर ये डिफेंस सिस्टम कायम होगा। और तीसरी बात जो उन्होंने की है कि उन्होंने हुक्म दे दिया है कि उनका जो एक RS-35 मिसाइल है जो कि 100 टन का है, उसको ऊपर काम शुरू करें और 2015 में उसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो ये जाहिर करता है कि वो डिफेंस मेजर ले रहे हैं।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। जान दयाल साहब, रूसी सदर मेदवेदोव ने कहा है कि मुसल्ला फौज के कमांडरों से कि वो हर तरह के मुकाबले के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने एक बात और भी कही कि अगरचे रूस ने मुजाकरात और बातचीत के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन मुजाकरात और बातचीत से बात बनती नजर नहीं आ रही है। यानी एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि बातचीत बनती नजर नहीं आ रही और इससे रूस की तवक्कात पूरी नहीं हो रही है। तो क्या आप ये समझे जाए कि इस मामले पे कम से कम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मामले पर रूस नेटो या रूस अमेरिका के दरमियान अब बातचीत का दरवाजा बंद हो चुका है?
दरवाजा तो बंद नहीं हुआ है, मगर जितना पहले खुला था उतना खुला भी नहीं है। मगर यहां पे मैं एक बात बताना मांगूंगा कि मैं पूरी तरह नहीं मानता कि जिसको आप कोल्ड वॉर कहते हैं दोबारा से शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत दूसरे इलाकों में, बहुत दूसरे ममालिक में और बहुत दूसरे जगह जैसे इकोनॉमिक इश्यूज में अभी भी रशिया जो सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद है अभी तक पूरी तरह सिमट नहीं पाया है, अपनी अपने आप को पूरा उठा नहीं पाया है, तो अभी भी वो कुछ हद तक कमज़ोर है। मगर जहाँ तक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, जहाँ तक नेशनल डिग्निटी की बात है और जहाँ तक नेशनल डिफेंस की बात है, वो जब गॉर्बाचेव के ज़माने में भी उसने ये कभी नहीं माना था कि सोवियत यूनियन के डिफेंस में जरा सी भी चूक आने देंगे, और उसको अभी दोबारा रशिया के मौजूदा राष्ट्रपति ने और आने वाले राष्ट्रपति ने पुतिन ने ये बात साफ कर दी है कि सोवियत डिफेंस सिस्टम पे, सोवियत सिक्योरिटी पे जरा भी आंच नहीं आने देंगे। उसके लिए चाहे उनको, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने बताया, कहीं अपने मिसाइल सिस्टम्स को रिन्यू करना पड़े, अमेरिकन और नेटो के मिसाइल सिस्टम्स को काउंटर करना पड़े, समुद्र के ऊपर, ओशंस के ऊपर अपने मिसाइल सिस्टम्स को ठीक करना पड़े, जो भी ज़रूरत है उसको वो मानेंगे, उसको वो करेंगे। जहाँ तक रही बातचीत की बात अमेरिका से, रशिया कोई इतना कमज़ोर भी नहीं है कि बातचीत पिछले पांव पर जाके करे, कोई कमज़ोरी की जगह से करे। अभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद डिफेंस के मामले में सोवियत यूनियन उतना गया गुजरा नहीं है, तो इस वास्ते वो थोड़ी कड़ी भाषा में बोल सकता है, वहाँ के राष्ट्रपति फौजों को ये कह सकते हैं कि आप तैयार रहिए। किसी छोटे मोटे देश की हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के सामने ये कह पाए। तो अमेरिका को भी इसमें एक सबक है। अमेरिका का सबक यह है कि अपने आप को तो वो मानता है पूरी दुनिया का पुलिसमैन, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी होगा हमला कर देंगे, जहाँ पे भी होगा कुछ, मगर उसको ये चौंका देने वाली बात होगी कि आपको रोकने वाले लोग अभी हैं और हमेशा थे।
जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मुमताज दानिश्वर डॉक्टर कंदील अब्बास। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
डॉक्टर साहब, बात हो रही है कि इन दिनों अमरीका और रूस के दरमियान, अमरीका और नेटो का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे मशरकी यूरोप में नस्ब किए जाने की बात हो रही है, उसको लेकर काफी कशीदगी बढ़ गई। चुनांचे मेदवेदोव ने कह दिया है मुसल्ला फौज के कमांडरों से रूस के कि वो हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें, और अब ये चीज हमारी सलामती के लिए खतरा बनती जा रही है। तो कशीदगी किस नहज पर जा रही है आपके ख्याल में?
बड़ी वाजह सी बात है कि कोल्ड वार के खात्मे के बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि वो इस जंग का फातह वो है, और इसी बुनियाद पर जो बाइपोलर सिस्टम था उसके बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम था वो अमेरिका ने अनाउंस कर दिया अपने दही कि ये यूनिपोलर सिस्टम होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे हुआ नहीं, इसलिए कि बाइपोलर सिस्टम के बाद अमेरिका ने जिस यूनिपोलर सिस्टम की बात की उसका फर्स्ट टेस्ट इराक वॉर में हुआ था, लेकिन इराक वॉर में यूएस को ना तो यूएन की सपोर्ट थी और ना यूरोप से वो सपोर्ट मिल सकी और ना बाकी दुनिया के और मुल्कों से, लेकिन बाद के जो यूएस के अटेम्प्ट थी उसके बाद बहुत सी, उसमें भी दुनिया ने देखा कि यूएस को यूनिलेटरल जो स्टेप्स थे उसमें बड़ी सख्त किस्म की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा बहुत सी जगहों पे, बहुत से मुल्कों में। तो इस बुनियाद पर अगर देखा जाए तो अमेरिका की ये कोशिश है कि वो यूएस लेड नेटो जो एक्टिविटीज हैं उसको इस लेवल पर ले जाए कि कोई दूसरा उसको रिजिस्ट ना कर सके, लेकिन इस सारी सूरत हाल में बहुत सी सफारती कोशिशें भी हुई जिसमें खुद रूस ने बहुत ज्यादा कोशिशें की कि दुनिया का मुस्तकबिल जो है उसको पीसफुल बनाने के लिए अब मजीद फौजी किस्म के इकदाम ना किए जाएं और फौजी तनाव और कशीदगी की सूरत हाल पैदा ना की जाए। लेकिन अमेरिका की तरफ से जिस मिसाइल शील्ड की बात हुई और खास तौर पर जब इसको मशरकी यूरोप तक तोसी देने की बात हुई तो इसको रूस ने दूसरे मुल्कों के दाखिली मामलात में मुदाखलत समझा और इसको अपने दाखिली मामलात में भी मुदाखलत समझा, और इसको रोकने के लिए रूस ने बहुत बड़ी सतह पर सफारती कोशिशें की और अमेरिका को और नेटो के दीगर जो रुकन ममालिक हैं उनको समझाने की बड़ी कोशिश की कि ये फौजी कशीदगी का बायस बनेगी। लेकिन जब अमेरिका ने यूनिलेटरल स्टेप्स ले इस अपनी मिसाइल शील्ड को तोसी देने के हतमी ऐलान किए हैं तो आखिरी स्टेज उसको ये ऐलान करना पड़ा कि सफारती कोशिशें कामयाब होती नजर नहीं आती और अब उसको फौजी इकदाम लेने पड़ेंगे। और इससे पहले एक आखिरी पेशकश भी की है रूस ने कि अगर यूएस यानी अमेरिका अगर इस मिसाइल शील्ड को बनाना ही चाहता है तो ये रूस और अमेरिका के बाहमी तावन से बनाई जाए और इसका कंट्रोल भी रूस और अमेरिका के पास मुश्तरका तौर पर हो, क्योंकि ये दोनों दुनिया की आम तरीन कुवतें हैं और ये दोनों मिलकर अगर चाहें तो तब दुनिया को एक पीसफुल एनवायरनमेंट दे सकती हैं। अगर अमेरिका ने यूनिलेटरल तरीके से और एक तरफा तौर पर इस मिसाइल शील्ड का कंट्रोल संभाला तो इसको ये समझा जाएगा कि उसमें रूस को झुकाने की कोशिश की जा रही है। तो इस आखिरी पेशकश को भी जब अमेरिका और नेटो ने ठुकरा दिया तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा रूस के पास कोई चारा बाज नहीं जाता था कि अब वो फौजी इकदाम के लिए अपनी फौजों को तैयार रहने का हुक्म दे दें।
जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आरिफ साहब। रूस के एतराज पर अमेरिका और नेटो का ये कहना है कि हम ये सब कुछ जो डिफेंस सिस्टम नस्ब कर रहे हैं वो ईरान और शुमाली कोरिया के मुमकिन हमले से बचने के लिए कर रहे हैं। अब देखें कि जब तारीख पर नजर डाली जाती है तो तुर्की में जहां मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब करने की बात की जा रही है ईरान के उसके दोस्ताना ताल्लुकात हैं, या मशरकी यूरोप के मुल्कों से आप देख लें ईरान के उसके दोस्ताना ताल्लुकात हैं, शुमाली कोरिया की बात ले लें कि जमहूरी चेक पोलैंड खुद शुमाली कोरिया ये सब अभी चंद ही बरस कबल की बात है कि एक ही ब्लॉक में थे, मशरकी ब्लॉक में थे, और पोलैंड से शुमाली कोरिया के ताल्लुकात जमहूरी चेक से शुमाली कोरिया के ताल्लुकात जो उस वक्त चेकोस्लोवाकिया हुआ करते थे इंतहाई दोस्ताना, रोमानिया से शुमाली कोरिया के ताल्लुकात, तो इन मुल्कों को भला शुमाली कोरिया से और ईरान से क्या खतरा हो सकता है? इस बहाने में कितना दम आप देख रहे हैं अमेरिका और नेटो के?
देखिए ये तो एक बहाना है क्योंकि रूस ने कई कोशिशें की। पहली कोशिश ये थी कि आप ये मिसाइल सिस्टम ना लगाएं यहाँ पर, तो लेकिन जब उन्होंने इंसिस्ट किया हम लगाएंगे तो फिर उन्होंने कहा कि हम दो ज्वाइंटली इसको लगाएं जो है, वो भी जब रिजेक्ट कर दिया तो रूस ने इनसे कहा कि देखिए ये ज्वाइंट कंट्रोल हो और लोकेशन उसकी टेक्नोलॉजी को हमको बताएं आप जो है। उस पर उन्होंने कहा कि हम नहीं बताएंगे आपको क्योंकि शायद आप ये टेक्नोलॉजी और इसके जो लोकेशन है जहां पर ये लगाए जाएंगे वो राज शायद आप ईरान को दे देंगे जो है ये। और उसके बाद जो लास्ट रूस ने कहा कि आप हमको लीगल कानूनी गारंटीज दें लिख करके कि आप इसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो जब उनसे मेदवेदेव ने पूछा अमेरिकनों से कि भाई आप ये आपको खतरा जो है वो रूस वो ईरान से है और नॉर्थ कोरिया से है, तो क्या ये दो ममालिक जो हैं उनके पास ICBM जो मिसाइल हैं इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हैं क्या उनके पास ये मिसाइल मौजूद हैं? तो उसका जवाब ये था कि नहीं इनके पास नहीं है। जब उनके पास ये नहीं है तो इसका लगाने का क्या जवाब होता है सिवाय ये कि रूस की जो डिटरेंट है जो उसकी पावर है जो उसके मिसाइल हैं उनको नाकाम बनाया जाए जो है। अच्छा इसलिए ये तो सफर आया है कि ये ना ये ईरान के खिलाफ है ना ये नॉर्थ कोरिया के खिलाफ मिसाइल के लिए बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही है एक्चुअली रूस के मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसलिए प्यूटिन ने अभी एक तकरीर में कहा कि अगर हुआ तो हम स्टार्ट न्यू स्टार्ट जो 2011 में साइन हुआ था अमेरिका और बरतानिया, हम शायद उससे अपने को अलग कर लें। ये मतलब यह है कि अब नेगोशिएशन जो है उसको आगे न बढ़ाया जाएगा इस बात के ऊपर। तो ये मसाइल जो हैं वो, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं हो रही है सिवाय बातूनी बातों के। अभी कैप्टन केसी साहब जो पेंटागन के स्पोक्समैन हैं, उनका साहब ये रूस के खिलाफ नहीं है, रूस खामखा इस बात को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है, लेकिन कोई ठोस उसका हल या उसके एक्सप्लेनेशन इन्होंने पेश नहीं की है जो है। और रूस को ये पता है कि इसका पर्पस क्या है, और उन्होंने देखा भी कि अमेरिका धीरे धीरे तमाम मुवालिक में गड़बड़ भी करा रहा है और उसके ज़रिए अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। उसने आपने देखा सीरिया में क्या करने की कोशिश की अमेरिकन पॉलिसी जो थी वहाँ इसके साथ। तो ये रूस जो है, अब रूस जो है वो इतना ना गरीब मुल्क है ना वो पीछे रह गया, तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, उस वो रिच हो गए हैं, उनकी आमदनी बहुत बढ़ गई है और अब वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि वो अपनी हिफाजत कर सकें और अपने उसूल जो है उसकी हिफाजत कर सकें और वो एक दुनिया में मेजर रोल अदा कर सकें। उसका जो लास्ट एग्जांपल था वो ये था कि सीरिया के ऊपर उन्होंने अपने बीटों को इस्तेमाल किया, इससे पहले उन्होंने इतनी मुखालफत वेस्टर्न कंट्रीज़ की और अमेरिका की नहीं की थी। ये जाहिर करता है कि अब रूस में खुद एतमादी आ गई है और वो अमीर हो गया है और अब वो इतना स्ट्रांग है कि वो अपना अपनी दफा कर सकता है।
जी जान दयाल साहब, अगर रूस जैसा कि आने वाले सदर पुतिन ने कहा है कि हम न्यू स्टार्ट माहिदे से अलग हो जाएंगे, इससे पहले भी स्टार्ट वन स्टार्ट टू माहिदा हुआ था, तो अब अगर ये स्टार्ट माहिदे से अलग हो जाता है रूस तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी दिफाई ताल्लुकात की जो रूस और अमरीका के दरमियान या रूस और नेटो के दरमियान है?
ताल्लुकात तो खट्टे होंगे, इसमें तो कोई शक है नहीं। और यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया में पलड़ा रूस का ही भारी रहेगा, क्योंकि रूस ने बारों बार अमेरिका की नीयत की एक तरीके से इम्तिहान लिया है और हमेशा अमेरिका उस इम्तिहान में फेल पाया गया है। अमेरिका की नीयत रूस के खिलाफ साफ है और कई सालों से चली जा रही है, बल्कि जब कोल्ड वॉर एंड हुई थी उसके बाद कभी भी अमेरिका ने रूस के बारे में अपनी राय कम नहीं की, रूस को तब भी एक तरीके से अपना दुश्मन माना। यूनाइटेड नेशन में हमने देखा, यूरोप में देखा, जो भी डिस्कोर्सेज इंटरनेशनल हुए हैं उसने कभी भी अमेरिका ने रूस को ना तो दोस्त समझा है ना अपने बराबर का समझा है। तो इंटरनेशनल डिस्कोर्स में तो रूस जानता है कि अमेरिका की उसके साथ जो पुरानी कोल्ड वॉर की दुश्मनी थी उसमें कतई कोई कमजोरी नहीं आई है, क्योंकि सरकमस्टांसेस ऐसे आ गए थे, इकोनॉमिक सरकमस्टांसेस ऐसे आ गए थे कि एक तरीके से कोल्ड वॉर का एंड हुआ। जहाँ तक स्ट्रैटेजिक डिफेंस की बात थी, जहाँ तक स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ की बात थी, वहाँ पे सोवियत ब्रेकडाउन के बाद भी जो रशियन फेडरेशन है उसके प्रति उसने कोई भी अमेरिका की नीयत में उसने कोई भी अच्छी बात नहीं पाई। इस वजह से आगे स्ट्रैटेजिक डिफेंस के अंदर क्या निगोशिएशन आएंगे, स्टार्ट टू में क्या रहेगा, ये आगे देखने की बात है। मगर इसमें बाकी दुनिया के लिए भी एक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि जब न्यूक्लियर इश्यूज़ के ऊपर, जब मिसाइल ट्रीटीज़ के ऊपर रशिया और अमेरिका की बातचीत होती है तो इससे दो सुपर पावर्स के बीच में बात नहीं हो रही है। और मैं यहाँ पर रशिया को भी आज की डिस्कशन के लिए सुपर पावर ही कहूँगा, ये दो मुल्कों के बीच में या दो सुपर पावर्स के बीच में कोई गुफ्तगु नहीं हो रही है। इसमें हमारा हिंदुस्तान में, ईरान में, पोलैंड में, अफ्रीका में, कोरिया में, हम सबों के जो इंटरेस्ट है इन्वॉल्व है, हम सबों की सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, हमारा फ्यूचर जिसको हिंदुस्तान में हम लोग कहते हैं हमारा भविष्य इन्वॉल्व है। तो हम लोग भी इस जो डिस्कशन हो रहा है, जो प्ले हो रहा है, उसको कोई खास अच्छी तरीके से नहीं देख रहे। कुछ डर है, कुछ भय है, कुछ खौफ है कि आगे क्या होगा।
जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कंदील साहब, आप क्या कहेंगे कि जब रूस ने ये कहा कि ठीक है अगर आप ये कहते हैं कि आपके खिलाफ नहीं है, यानी मास्को के खिलाफ नहीं है, तो ठीक है इस मंसूबे में हमें भी शामिल कीजिए, इस पर भी अमेरिका और नेटो तैयार नहीं, तो जब रूस को अपने साथ शरीक करने के लिए तैयार नहीं अमेरिका और नेटो, तो تو پھر ان کا یہ بہانہ کہ یہ میزائل جو نصب کیا جا رہا ہے سسٹم، یہ ایران اور شمالی کوریا کے حملوں سے بچنے کے لیے کتنا دمدار رہ جاتا ہے آپ کے خیال میں؟
خود یہ اس طرح کا کلیم جو ہے یہ اس کو انویلڈ کر دیتا ہے اس طرح کی بات کو، کہ امریکہ یا نیٹو جس میزائل شیلڈ کی بات کر رہے ہیں اس سے وہ پوری امن و امان کا ایک انوائرمنٹ اس میں کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جو ایک پرسپشن ڈیولپ ہو رہی ہے روس میں یا امریکہ کے ساتھ ڈفرنس آف اوپینین رکھنے والے ملکوں میں، وہ یہ ہے کہ امریکہ صرف ان ملکوں کو پروٹیکشن دینا چاہ رہا ہے، ان ملکوں کی حفاظت کا ذمہ لینا چاہ رہا ہے جو جن کے انٹرسٹ میچ کرتے ہیں اور جہاں پر امریکن انٹرسٹ جو ہے ان کو کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، لیکن جن ملکوں میں امریکہ کے ساتھ ڈفرنس آف اوپینین پایا جاتا ہے یا جہاں پر امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں ان کی اس طرح حفاظت نہیں ہو رہی جس طرح امریکہ چاہتا ہے، تو وہاں پر وہ یہ پرسپشن ہے کہ ان کے داخلی معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے اور ان کے خلاف ایک محاذ تیار کیا جا رہا ہے. جیسے ابھی صدر اوباما نے جنوبی کوریا کے دورے پر جو شمالی کوریا کے لانگ رینج میزائل کے تجربے کے بارے میں ایک انتباہ دیا اور انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، حالانکہ شمالی کوریا کا یہ کہنا ہے کہ یہ لانگ رینج میزائل جو ہے وہ سیٹلائٹ بھیجنے کے لیے وہ ایسا ایک تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کو جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ یہ ایک اینٹی بیلسٹک میزائل شاید بنے یا ایک لانگ رینج میزائل وہ بنے گا، اور اس طرح کی باتوں کے ساتھ ایک بالکل مس پرسپشن والا ماحول ڈیولپ کر رہے ہیں جس سے دوسرے جو ملک ہیں جن کا امریکہ کے ساتھ ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے وہاں پر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ امریکہ کے کسی بات کو مثبت نہیں سمجھتے، اور پھر جب عملی طور پر بھی امریکہ ڈفرنس آف اوپینین رکھنے والے ملکوں کو اپنے اس طرح کے منصوبوں میں شامل نہیں کر رہا، تو اس سے کلیئر کٹ بات یہ سامنے آتی ہے کہ ایک ایسا محاذ تیار کیا جا رہا ہے دوبارہ سے، وہی جیسے کولڈ وار کا محاذ تھا جس میں ایک طرف امریکہ اور اس کے انٹرسٹ کے ساتھ چلنے والے ملک ہوں اور دوسری طرف جو ہے امریکہ کے انٹرسٹ کے ساتھ ڈفرنس اوپینین رکھنے والے ملک ہوں. جہاں تک ایران یا شمالی کوریا کی بات ہے تو ان ملکوں کا جو اپنا ڈیفنس سسٹم ہے وہ بڑا کلیئر اور ڈیفائنڈ سسٹم ہے، اور اپنی جو ان ملکوں کی نیشنل سوورینٹی ہے اور انٹرنیشنل لاز ہیں اس کے اندر رہ کر یہ ملک اپنا ڈیفنس سسٹم ارینج کر رہے ہیں، اور صرف ایران اور شمالی کوریا نہیں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک بھی اسی رینج میں اپنے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اگر صرف ان دو ملکوں کو کاؤنٹر کرنا اس کے ذہن میں ہے امریکہ کے، تو اس میں پورا مشرق یورپ اور ادھر سے ترکی اور پورا یورپ اور پھر ایشیا اور افریقہ کے علاقوں کو بھی اپنے زیر نگین لے لینا اور کنٹرول میں لانا یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ صرف ایران یا شمالی کوریا کے لیے، بلکہ ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ جو امریکہ کا اپنا ایک ڈیزائن یونی پولر سسٹم ہے جس میں ٹاپ آف دا ٹاور خود امریکہ اور باقی جتنی کنٹریز ہیں دنیا کے وہ اس کے نیچے ہوں، اگر اس طرح کی کوئی ڈیزائننگ ہے تو ظاہر ہے جو ڈیفنس آف اوپینین رکھنے والے ملک ہوں گے وہ اس طرح کی ڈیزائننگ کو کبھی قبول نہیں کریں گے.
جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا. پروفیسر عارف صاحب، آپ دیکھیں عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ نو منتخب صدر ولادیمیر پوتین میدویدوف کے مقابلے میں زیادہ یوں کہا جائے کہ سنجیدہ ہیں اور زیادہ دو ٹوک یا سخت لب لہجے میں مغرب اور امریکہ سے بات کرتے ہیں، تو اب جبکہ پوتین عنقریب ہی کرملن میں جانے والے ہیں اور ملک کی باگ ڈور بحیثیت صدر سنبھالنے والے ہیں، تو پوتین کے آنے کے بعد جو موجودہ صورتحال ہے اس کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ کتنی کشیدگی اور بڑھ سکتی ہے اگر امریکہ اور نیٹو نے روس کے تحفظات کو تسلیم نہ کیا؟
دیکھیے، پوتین جو ہے وہ امریکہ جا رہے ہیں مئی میں، جی ایٹ کی میٹنگ ہے، کنٹریز کی میٹنگ ہے، اور اس کے بعد نیٹو کی بھی میٹنگ ہوگی. اگر پوتین نیٹو میٹنگ میں نہیں جاتے ہیں جو کہ زیادہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ اس میٹنگ کو بائیکاٹ کریں گے جہاں پر ان کو رائٹ ہے جانے کا نیٹو کے آبزرور کے حیثیت سے، وہاں پر وہ شاید نہ جائے جو ہے جی ایٹ میٹنگ کرنے کے بعد نہ جائے، لیکن ان کی آخری اس دوران ان کی ملاقات اوباما سے ہوگی، اور دیکھنا یہ ہے کہ اوباما میں की थिंकिंग में कितनी लचक है, लेकिन मुश्किल यह है कि ओबामा की खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इलेक्शन आ रहा है और वो अपने को किसी तरह कमजोर जाहिर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो शायद कोई कंसेशन नहीं देंगे। जब वो कंसेशन नहीं देते हैं तो रूस का जो रवैया होगा वो और सख्त होगा। उसको मालूम है कि भाई जो जो अमेरिका है उसके सिर्फ तीन ममालिक उसके साथ हैं, बेसिकली बर्तानिया और फ्रांस दो ममालिक जो हैं, बाकी तो छोटे छोटे ममालिक हैं, ना उनके पास फौज है, ना उनकी मईशत कोई स्ट्रांग है, ना उनकी कोई खास वक्त है, और वो फौज किसी झगड़े में ज़्यादा पड़ेंगे भी नहीं। जो है यूरोप के तमाम ममालिक जो है वो नहीं पड़ेंगे, जिन ममालिक में ये लगा रहे हैं मिसाइल वहाँ के अवाम उन मिसाइल्स के खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनको घसीटा जाए रूस और अमेरिका की जंग के अंदर जो है, तो वहाँ पर लोग खिलाफ हैं। मैं अभी बात कर रहा था एक मेयर है पोलैंड के जहाँ के करीब जिनके ये मिसाइल लगाने का इरादा है, वहाँ कह रहे थे कि तमाम जो आबादी है वहाँ की वो सख्त खिलाफ इस बात के कि हमको फिर एक कोल्ड वार में घसीटा जा रहा है, हम अभी निकले हैं उससे, अब हमको फिर घसीटा जा रहा है। यही हालत और कंट्रीज के अंदर भी है कि लोग जो है वो इसके खिलाफ हैं कि ये मिसाइल उनके मुल्कों पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी लीडरशिप जो है वो अभी तक अमेरिका के साथ है और इस बात के ऊपर वो कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अब रूस जो है वो इस बात पर जहां तक उसकी अपनी सिक्योरिटी का मामला है वो कोई किसी तरह की भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, ये उनको पता है। और उनको ये भी पता है कि पर्पस, इसका पर्पस क्या है। जो है जैसा मैंने पहले कहा कि जब मेदवेदेव ने पूछा कि भाई आप कह रहे हैं चीन वो ईरान और नॉर्थ कोरिया के आईबीएम जो आईसीबीएम जो हैं उनसे खतरा है ईस्टर्न यूरोप को, तो उनका उनके पास ऐसे मिसाइल हैं इस वक्त, तो उसका जवाब था नहीं है। तो जब नहीं है उनके पास तो आप क्यों इस चीज को यहां लगा रहे हैं, क्या जवाब उसका बनता है। जो है तो रूसी तो इस बात को समझते हैं कि इसका सारा पर्पस ये है कि उनके डिटरेंट को कम किया जाए और जो पैरिटी है रूस और अमेरिका में उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए अमेरिका के फेवर में, ये सारा स्ट्रेटेजी है और ये वो जानते हैं। जो है तो ये मसला और बढ़ेगा मेरा ख्याल, ये घटेगा नहीं। जो है
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ। जान दयाल साहब, आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूंगा कि पुतिन के बाद वाले रूस को अमरीका के मुकाबले में आप कैसा देख रहे हैं?
जी देखिए, रूस बहुत पुराना देश है, ज़ार्स के ज़माने से आया हुआ है, ये नहीं चाहिए, इसने अपना पावर देखा है। सोवियत ब्लॉक के अंदर इसने अमेरिका को चैलेंज दिया, पूरे वेस्ट को चैलेंज दिया और 70-80 साल तक ये बरकरार रहा। इकोनॉमिक क्राइसिस के रहते हुए इस टूटा, मगर उसके बाद भी टूटा तो सही, थोड़ी गरीबी आई, थोड़ी और आँच आई, मगर कभी चकनाचूर नहीं हुआ। इसकी शान शौकत में इसको अपने बारे में जो इसका विचार है, इंपीरियल रशिया ज़ार्स के ज़माने से चला रहा है, उसमें कभी कम नहीं हुआ। ये कभी भी अपने आप को अपनी आंखों में नहीं गिराएगा, और इस वास्ते जब ये बिल्कुल गोरबचेव के बाद एक तरीके से अपने घुटनों पे बीता, तब भी इसके अंदर एक एक ग्रेस था, एक शक्ति थी। जहाँ तक रहा पुतिन की बात, पुतिन चाहे प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, पुतिन बादशाह है रशिया के, और वो जो रशिया मांगते हैं, वो रशिया जो चाहते हैं, जो रशिया को वो बना रहे हैं, वो ऐसा रशिया है जो किसी के आगे घुटने नहीं टेकेगा, जो शायद सोवियत यूनियन की तरह पूरे इंपीरियल ग्लोब के ऊपर अपनी छवि ना छोड़ना मांगता हो, पूरे ग्लोब के ऊपर हावी ना होना मांगता हो, मगर जो उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें तो वो अपने बात में कभी भी कमी नहीं आने देगा। मेरा पर्सनल ये मानना है, और जो वेस्टर्न डेटा से जो इन्फॉर्मेशन आती है, रशिया के जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं डिफेंस के या स्पेस के, कई एक तो कमर्शियल हो गए हैं, मगर और कई एक जो मेजर टैंक फैक्ट्री थी शायद उनमें कुछ घाटा आया हो, मगर जो बेसिक रिसर्च है डिफेंस की उसमें कोई कमजोरी उसने रशिया ने आने नहीं दी है। वहाँ की गवर्नमेंट जानती है कि वक्त बेवक्त उसको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए कोई नेटो नहीं आएगा, उसके लिए वो जो ईस्टर्न ब्लॉक था शायद वो भी नहीं है, तो बल्कि पहले से ज़्यादा अब रशिया अपने पैरों पे खड़े होने की इच्छा रखता है, ताकत रखता है, और आगे आने वाले समय में मेरा ख्याल है वो किसी भी हालत में इस तरह नहीं कर पाएगा। और मेरे ख्याल बाकी देशों के लिए भी, यूनाइटेड नेशंस के बाकी जो देश हैं उनके लिए भी अच्छी बात होगी कि बाई थोड़ी सी बाई पोलैरिटी आए, क्योंकि अमेरिका के इलेक्शन आते हैं जाते हैं, आज ओबामा कुछ थोड़ी सी ढील दे रहे हैं, थोड़ी सख्ती बरत रहे हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन के हिसाब से अपना खेल खेलना है। कल कोई और प्रेसिडेंट आ सकता है, क्या करेगा अमेरिका अपने इकोनॉमिक डिप्रेशन से निकलने के लिए, क्या आगे करेगा? तो अमेरिका को दुनिया का चौकीदार, दुनिया का इकोनॉमिक इंजन छूट देने की मेरा ख्याल है खतरा रशिया मोल नहीं लेगा। और अगर आप यूरोप का अगर आप दौरा करें, अगर आप नेटो के देशों में भी जाएं, और मेरे पाकिस्तानी दोस्त ने बहुत अच्छा एक फ्रेज इस्तेमाल किया था, वो देश जिनका नुक्ते नजरिया अमेरिका से फर्क है, जो अपने बारे में अपने आप सोच सकते हैं, जिनको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखने की ताकत है, उन देशों में भी नहीं चाहेंगे लोग, ना वहां की जनता चाहेगी, ना वहां की सरकारें चाहेंगी, ना वहां के पॉलिटिकल प्रोसेस चाहेंगे कि अमेरिका को खुली छूट दे दी जाए, जैसे बुल इन अ चाइना शॉप की तरह छोड़ दिया जाए कि दुनिया में अपनी मनमानी जैसे कर सकता है करे।
जी बहुत शुक्रिया जानदयाल साहब,
इस बारे में मैं
जी
कि आने वाले 20 30 40 साल में रशिया का एक बहुत अहम रोल रहेगा।
जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया। डॉक्टर कंदील साहब, रूस ने यहां तक कह दिया कि ठीक है, आप ये कहते हैं कि रूस के खिलाफ ये डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो आप तहरीरी तौर पर लिख के दे दें, यानी मकतूब जमानत दे दें, तो अमेरिका और नेटो इसके लिए भी तैयार नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि रूस के इस तरह के धमकी आमेज बयानात के बाद किसी तरह की कोई नरमी अमेरिका और नेटो की तरफ से देखने में आएगी कि कोई जमानत या किसी तरह की ढील रूस को दें?
देखिए, अगर अमेरिका या नेटो की तरफ से उनके मौकफ में नरमी नहीं आएगी तो मैं समझता हूं कि इस बात की भी कोई गारंटी मौजूद नहीं है कि इन अमेरिका और नेटो के इकदाम के अगेंस्ट कोई रूस जो है बिल्कुल खामोश बैठा रहेगा। बल्कि जैसा कि दयाल कह रहे थे कि खुद रूस अगरचे इक्तिसादी लिहाज से एक काफी कंपैरेटिवली जो उस जमाने का रूस था उसके मुकाबले में आज रशिया जो है काफी कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद पिछले हमने दो दहाइयां गुजर चुकी हैं जो सर जंग का खात्मा है, इसके बावजूद हमने देखा कि रूस ने बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव किया है और खासतौर पर फौजी महाज पर किसी सूरत उसने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। बाज जगहों पर जो कंप्रोमाइज रूस को करना पड़ा वो उस हद तक था कि जहां तक उसका एक बैलेंस ऑफ पावर जब ना बिगड़ता हो तो वहां तो उसने कंप्रोमाइज किया, लेकिन अब सूरत हाल जो पैदा हुई है इसमें वो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और अगर ये बैलेंस ऑफ पावर अमेरिका और नेटो के फेवर जाता है तो इसको किसी तौर पर रूस जो है इस पे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। किसी न किसी तरीके से ये बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना पड़ेगा रूस के लिए, और इसमें अमेरिका और नेटो को उनके साथ कोई ना कोई कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। दूसरी सूरत में मैं समझता हूं कि गिव एंड टेक जो कोशिश अमेरिका या नेटो रूस के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने देखा कि ईरान के खिलाफ पाबंदियों के दौरान बहुत ज्यादा प्रेशर आया रूस के ऊपर, इसी तरह शुमाली कोरिया के ऊपर मौका प्रेशर आया, अभी हाल ही में हमने देखा कि शाम के मामले में बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया, लेकिन यहाँ पर रूस ने जब देखा कि उसका बिल्कुल ही मिडिल ईस्ट से खात्मा किया जा रहा है और उसकी बात को खत्म किया जा रहा है तो आखिरी हद तक गया रूस और उसने वीटो किया सिक्योरिटी काउंसिल में जाके। तो जहां सियासी महाज पर एक अरसे के बाद हमने देखा कि रूस की तरफ से अमरीका के सामने वीटो की सूरत में रूस सामने आता है, वहां ये भी नजर आ रहा है कि अब अगर अमेरिका की तरफ से या नेटो की तरफ से बैलेंस ऑफ पावर को बिगाड़ने की कोशिश की गई तो सब जंग अब उस तरीके से शायद शुरू ना हो, लेकिन अगर रूस कोई अमली इकदाम करते हैं फौजी महाज पर तो इसके बहुत भयानक नतायज सामने आ सकते हैं।
बहुत शुक्रिया आपका नवाजी साहब की कि आपने कीमती वक्त याद किया। आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा प्रोफेसर आरिफ साहब से, डेढ़ दो मिनट का वक्त बचा, आरिफ साहब मुख्तसर जवाब चाहूंगा। अब जबकि इतना सख्त लबो लहजे वाला बयान रूसी रहनुमाओं की तरफ से आ रहा है, तो क्या अमेरिका जो गुज़िश्ता दो ढाई साल से लैतोलाल की पॉलिसी अपनाए हुए है कि वक्त गुजारने दो, अब किसी नरमी की तवक्को कर सकेगा रूस से?
روس کو اب ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ ممالک جو اس کے خلاف ہیں جیسے امریکہ ہے, برطانیہ سے, وہ خود معاشی طور پر بہت کمزور ہو رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ان کو افغانستان میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے, وہ اور بغیر روس کی مدد کے بغیر یہ کہیں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. روس کا ویٹو پاور ہے اس کے پاس یونائٹڈ نیشن میں, وہ اس کا اثر رسوخ اب بھی بہت زیادہ ہے دنیا میں, اور روس کے بغیر وہ کوئی چیز اچیو نہیں کر سکتے ہیں. تو روس کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ اتنی لچک رکھے کہ اپنے تمام مفاد جو ہے وہ مفادات کو وہ امریکہ کے حوالے کر دے. اس لیے روس میں اب روس جو ہے اب وہ اس بات پہ تیار نہیں ہوگا کہ جیسے انہوں نے لیبیا میں کر لیا یا دوسرے علاقوں میں کر لیا جو چاہے من مانی کی, اب روس اس چیز کی اجازت نہیں دے گا. اور یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے مڈل ایسٹ میں, ایران میں, اس کے بعد سیریا میں, یہ تو جیو پولیٹیکل گیم ہے اس علاقے سے امریکہ کا اپنا اثر رسوخ بڑھانے کا اور اس علاقے پر اپنا تسلط قائم کرنے کا ہے. اور روس جو ہے یہ جانتا ہے کہ اگر ان کا تسلط ہوا تو ہمارا جو ہے اثر رسوخ اس علاقے سے ختم ہو جائے گا. اس
لیے
روس جو ہے کسی بات پر اب کمپرومائز نہیں کرے گا. جو ہے
بہت شکریہ آپ کا, اور اسی طرح جانجال صاحب اور قندیل صاحب کے اور اپنے معزز ناظرین کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آخری وقت تک ہمارا ساتھ دیا. ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. جی نوازش جانجال صاحب, آپ لوگوں نے مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی اور نتیجہ یہی ہے کہ اب روس اس پوزیشن میں ہی جیسا کہ امریکہ آج سے 10 سال پہلے تصور کر رہا تھا, اور ظاہر ہے کہ امریکہ کا یہ خواب ایک بار پھر روز اول سے ہی اگر سے چکنا چور تھا لیکن دنیا کے سامنے چکنا چور ہو جائے گا کہ وہی دنیا کا اکیلا سپر پاور ہے. ایسا نہیں بلکہ دنیا میں اگر اس وقت چند قطبی نظام کی حمایت کی جا رہی ہے تو یہ ایک حقیقت ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس عزیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے.